विकास यानी डेवलपमेंट। उद्विकास की तरह विकास की अवधारणा भी बहुत स्पष्ट नहीं है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसके अर्थ के संबंध में कोई विशेष विवाद नहीं है, पर समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग काफी ढीले ढाले अर्थों में होता आया है। इसका शाब्दिक अर्थ किसी चीज के क्रमशः फैलाव से है, जैसे किसी बच्चे की लंबाई या घुसखोरी में समय के साथ जो वृद्धि होती है तो उसे विकास कहा जा सकता है। पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विकास का अर्थ सामाजिक विकास से है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों विशेषकर कॉम, स्पेंसर एम होबहाउस ने सामाजिक उद्विकास यानी सोशल इवोल्यूशन, प्रगति यानी प्रोग्रेस एवं सामाजिक परिवर्तन को समान अर्थ में प्रयोग किया था। आधुनिक समाजशास्त्री इन शब्दों को कुछ विशेष अर्थ में ही इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर वर्तमान समाजशास्त्र के क्षेत्र में विकास से हमारा तात्पर्य मुख्यतः सामाजिक विकास से है। इसका प्रयोग विशेषकर उद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण के चलते विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए होता है। सामाजिक विकास में आर्थिक विकास का भी भाव छिपा होता है, और उसी के तहत हम परंपरागत समाज यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी, संक्रमणशील समाज यानी ट्रांजिशनल सोसाइटी एवं आधुनिक समाज यानी मॉडर्न सोसाइटी की चर्चा करते हैं। यहाँ कोई उद्विकास का भाव नहीं है, यहाँ कुछ उसी तरह का भाव है जो शिक्षा के विकास में छिपा है। आधुनिक शिक्षा का विकास भी एक प्रकार का सामाजिक विकास है। उसी तरह से कृषि पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से उद्योग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होना भी सामाजिक विकास कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म से पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की ओर जाना भी एक प्रकार का विकास है। वर्तमान समय में सामाजिक विकास को एक वस्तुनिष्ठ अर्थ में प्रयोग करने की चेष्टा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के विभिन्न रिपोर्टों में सामाजिक विकास को मापने के सूचक यानी इंडिकेस एवं पैमाने यानी स्केल्स दिए गए हैं। सामाजिक विकास के कुछ प्रमुख संकेतक इस प्रकार हैं: जीवन यापन का स्तर, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गरीबी का स्तर, लेवल ऑफ पॉवर्टी, शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन, समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने की संभावना, अपॉर्चुनिटीज फॉर अपवर्ड मोबिलिटी फॉर डाउन टॉर्डनेस, राज्य के द्वारा सामाजिक कल्याण की सुविधा, अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशल वेलफेयर बाय गवर्नमेंट, समाज में आर्थिक असमानता, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, स्वास्थ्य का स्तर, लेवल ऑफ हेल्थ कंडीशन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एट बर्थ इत्यादि। चूंकि उद्विकास एवं प्रगति यानी इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस के अर्थ के संबंध में काफी विवाद और भ्रम रहा है, इसलिए ऑगबोर्ट ने उन शब्दों की जगह सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत सभी किस्म के उद्विकास और प्रगति से जुड़े परिवर्तन आ जाते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन एक बृहत्तर शब्द है, जिसके अंतर्गत उद्विकास यानी इवोल्यूशन, प्रगति यानी प्रोग्रेस, सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट एवं क्रांति यानी रिवॉल्यूशन समाहित हो जाते हैं। सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट। आधुनिक काल में सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारक रहा है। विशेषकर परंपरागत समाज में सामाजिक आंदोलन के द्वारा काफी परिवर्तन आए हैं, इसलिए इनकी चर्चा यहाँ की जानी चाहिए। लेकिन इस शब्द के अर्थ के संबंध में थोड़ी कठिनाइयाँ हैं, अतः इस अवधारणा की विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। गिडिंस ने सामाजिक आंदोलन को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है। अ सोशल मूवमेंट मे बी डिफाइंड एज कलेक्टिव अटेम्प्ट टू फर्दर अ कॉमन इंटरेस्ट और सिक्योर अ कॉमन गोल थ्रू कलेक्टिव एक्शन आउटसाइड द स्फेयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन। आंदोलन व्यक्तियों का एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसका एक सामान्य उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा न लेकर लोग अपने ढंग से व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। गिडिंस ने कहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सामाजिक आंदोलन और औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह की चीजें हैं, पर दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नौकरशाही व्यवस्था जैसे नियम नहीं होते, जबकि औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही नियम कानून की अधिकता होती है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच उद्देश्यों का भी फर्क होता है। विश्वविद्यालय एक औपचारिक व्यवस्था है पर सामाजिक आंदोलन नहीं है। उसी तरह से कबीर पंथ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या हाल का पिछड़ा वर्ग आंदोलन यानी बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, ये सब सामाजिक आंदोलन कहा जा सकता है, औपचारिक व्यवस्था नहीं। पर कभी कभी दोनों के बीच की दूरी इतनी कम रहती है कि सामाजिक आंदोलन और औपचारिक व्यवस्था के बीच अंतर दर्शाना कठिन काम हो जाता है। कभी कभी सामाजिक आंदोलन एवं स्वार्थ समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों पर्यायवाची जैसा लगता है, लेकिन दोनों में फर्क है। सामाजिक आंदोलन परंपरागत व्यवस्था के विरोध में एक स्थापित जनसमूह है, जबकि स्वार्थ समूह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नीति निर्धारकों का विचार प्रभावित करना होता है। स्वार्थ समूह आमतौर पर राजनीतिक या नौकरशाही व्यवस्था के क्षेत्र में काम करता है, जबकि सामाजिक आंदोलन का दायरा उससे काफी बड़ा होता है। आबरली ने सामाजिक आंदोलन को चार भागों में बांटा है, वे इस तरह से हैं। पहला, रूपांतकारी आंदोलन, ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट। कुछ ऐसे भी सामाजिक आंदोलन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सामाजिक परिवर्तन होता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी कभी लोग हिंसा की नीति भी अपनाते हैं, जैसे नक्सलवाड़ी आंदोलन। दूसरा, सुधारात्मक आंदोलन, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। समाज में कुछ आंदोलन वैसे भी होते हैं जिनका उद्देश्य सीमित सामाजिक परिवर्तन होता है। जब समाज में कुछ दुर्गुण या बुराइयां उत्पन्न होती हैं तो उसे दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ता है, ताकि मूल व्यवस्था को जीवंत एवं उपयोगी बनाए रखा जाए। भारत में सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन एवं ब्रह्म समाज आंदोलन इसी किस्म के आंदोलन माने जाते हैं। मुक्ति आंदोलन, रिडेम्प्टिव मूवमेंट। कभी कभी समाज में ऐसी बुराइयां फैल जाती हैं जो पूरे समाज के लिए खतरा बन जाती है। वैसी स्थिति में कुछ वैसे आंदोलन चलाए जाते हैं जिससे समाज को खतरे से बचाया जाए। घुसखोरी एक ऐसी समस्या है जिससे पूरी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को खतरा है। यदि घुसखोरी को रोकने के लिए कोई आंदोलन चलाया जाए तो वैसे आंदोलन को मुक्ति आंदोलन कहेंगे। चूंकि कबीर ने ब्राह्मणों एवं मुल्लों के कुप्रभाव से समाज को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया था, इसलिए कबीर पंथ को एक मुक्ति आंदोलन कहा जा सकता है। उसी तरह आधुनिक भारत में बाबा साहेब अंबेडकर का अछूतो द्वार यानी रिमूव अनटचेबिलिटी का कार्य एक मुक्ति आंदोलन था। चौथा, वैकल्पिक आंदोलन, अल्टरनेटिव मूवमेंट। वैकल्पिक आंदोलन वह आंदोलन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन में आंशिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है। आज बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो धूम्रपान एवं नशाखोरी के विरोध में देश में आंदोलन चला रही हैं। उनकी कोशिश यह हो रही है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन लाए जाएं जिनसे उन्हें उनके बुरी आदतों से मुक्ति मिले और ऐसी बुराई समाज में और नहीं फैले। यहाँ गौर करने की बात यह है कि वैकल्पिक आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा समाज के कुछ व्यक्तियों के जीवन में आंशिक परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। अर्थात अन्य तीन किस्म के सामाजिक आंदोलन की तुलना में इसका दायरा थोड़ा छोटा होता है। क्रांति, रिवॉल्यूशन। क्रांति सामाजिक आंदोलन से भी ज्यादा सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए यहां इसकी भी चर्चा आवश्यक है। क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन पिछले 2-3 शताब्दियों में मानव इतिहास में काफी बड़ी बड़ी क्रांतियां आई हैं, जिन क्रांतियों ने कुछ मुल्कों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन लाया है। इस संदर्भ में 1775 से 1783 की अमेरिका क्रांति एवं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन क्रांतियों के चलते आज समस्त विश्व में स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वलिटी और प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात की जाती है। उसी तरह से रूसी और चीनी क्रांति का विश्व स्तर पर अपना ही महत्व है। एब्रेम्स ने बताया है कि विश्व में अधिकांश क्रांतियां मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई हैं। हेना अरेंट ने बताया है कि क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य परंपरागत व्यवस्था से अपने आप को अलग करना एवं नए समाज का निर्माण करना है। इतिहास में कभी-कभी इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। कुछ ऐसी भी क्रांतियां हुई हैं जिनके द्वारा हम समाज को और भी पुरातन समय में ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही समय पहले ईरान के अंतर्गत खुमैनी के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, उसका मुख्य उद्देश्य बदलते हुए ईरानी समाज पर इस्लाम को पुनः अधिक से अधिक स्थापित करने की कोशिश ही थी। क्रांति किसे कहते हैं, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन क्रांति की परिभाषा थोड़ी कठिन है क्योंकि यह बहुत कुछ मूल्य सापेक्ष अर्थ रखता है। एंथनी गिडेंस ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि वी कैन डिफाइन अ रिवॉल्यूशन एज अ सीजर ऑफ ए स्टेट पावर थ्रू वायलेंट मीन्स बाय द लीडर्स ऑफ अ मास मूवमेंट वेयर डैट पावर इज सब्सिक्वेंटली यूज टू इनिशिएट मेजर प्रोसेसेस ऑफ सोशल रिफॉर्म। मुख्य रूप से इस परिभाषा में तीन बातें कही गई हैं। पहला, क्रांति एक राजनीतिक प्रक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया के अंतर्गत सत्ता का हस्तांतरण होता है। क्रांति का माध्यम एक हिंसक आंदोलन होता है, ये दूसरा। और तीसरा, क्रांति का उद्देश्य मौलिक सामाजिक परिवर्तन होता है। किसी सामाजिक आंदोलन को क्रांति कहा जाए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें मौजूद हैं या नहीं। गिडेंस के अनुसार सामाजिक आंदोलन को क्रांति कहे जाने के लिए तीन शर्तों का पूरा होना अति आवश्यक है। वे हैं, पहला, क्रांति कई घटनाओं की एक कड़ी नहीं है, बल्कि यह एक बड़े पैमाने पर विशाल जन आंदोलन है। पर यदि कोई आंदोलन चुनाव के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण में सफल होता है तो उसे क्रांति नहीं कहा जाएगा। उसी तरह यदि कोई उच्च सेना अधिकारी शासन की बागडोर जबरदस्ती एकाएक छीन या हथियार लेता है तो उसे भी क्रांति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। दूसरा, क्रांति का मुख्य उद्देश्य बृहत सामाजिक सुधार या परिवर्तन है। नेताओं में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जिन उद्देश्यों के लिए क्रांति की गई है उसे बहुत हद तक वे अमली जमा पहनाने में सफल हों। इस बात की पुष्टि स्कॉक पॉल एवं जॉन डग ने भी किया है। तीसरा, क्रांति एक राजनीतिक परिवर्तन है जिसका मुख्य आधार हिंसा होता है। समाज में इसकी तभी आवश्यकता पड़ती है जब समाज में वर्तमान नेता कुछ सही सोचने एवं मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यदि किसी सामाजिक आंदोलन में ये तीनों बातें मौजूद नहीं हैं तो उसे हम मात्र सामाजिक आंदोलन कहेंगे, क्रांति नहीं कहेंगे। क्रांति की अवधारणा में एक बात और छिपी है। इसके द्वारा सिर्फ नई सामाजिक संरचना की स्थापना ही नहीं होती है, बल्कि विकास की नई संभावनाएं भी बनती हैं। अर्थात क्रांति में प्रगति या सामाजिक विकास, प्रोग्रेस और सोशल डेवलपमेंट की अवधारणा भी सन्निहित है। क्रांति मात्र सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं है। यह एक शर्त अवश्य है, पर किसी निश्चित उद्देश्य के अभाव में इस प्रक्रिया को सही मायने में क्रांति नहीं कहा जा सकता है। कुछ विचारकों का कहना है कि क्रांति का स्वरूप अहिंसक भी हो सकता है। मानव के इतिहास में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसे क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है, पर उस क्रांति में कोई हिंसा की बात नहीं थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति एक अहिंसक क्रांति का उदाहरण है। इस उदाहरण से ऐसा लगता है कि क्रांति का स्वरूप सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भी हो सकता है। इस औद्योगिक क्रांति को सही मायने में क्रांति कहा जाए या नहीं, यह एक विवाद का विषय है। पर इतना तो निश्चित है कि ऐसी क्रांति को जॉन डन, स्कॉक पॉल एवं एंथनी गिडिंस क्रांति नहीं मानते हैं। अब हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, यह समाजशास्त्रियों के चिंतन का एक प्रमुख विषय वस्तु रहा है। प्रारंभ में तो सामाजिक परिवर्तन दार्शनिकों की विषय वस्तु रही, पर आज दार्शनिकों का स्थान समाजशास्त्रियों ने ले लिया है। वस्तुतः समाजशास्त्र का उद्भव भी सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए ही हुआ। अधिकांश पश्चिमी समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन के अनेक सिद्धांत विकसित हुए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति के अनुसार इसे हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। वे हैं, उद्विकासीय सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी, चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिकल थ्योरी और संघर्ष सिद्धांत यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। सामाजिक प्रक्रियाएं यानी सोशल प्रोसेसेस के विश्लेषण के लिए प्रकार्यवादी सिद्धांत यानी फंक्शनल थ्योरी भी एक प्रमुख सिद्धांत है। लेकिन इस सिद्धांत से मात्र इतनी ही जानकारी मिलती है कि समाज के विभिन्न अंग किस प्रकार एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को जितना अच्छा विश्लेषण उद्विकाशीय, चक्रीय एवं संघर्ष सिद्धांतों के जरिए होता है, उतना प्रकार्यवादी सिद्धांत के माध्यम से नहीं होता है। कुछ समाजशास्त्रियों का तो कहना है कि प्रकार्यवादी सिद्धांतों की मदद से सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन संभव ही नहीं है। इन समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से मात्र यही जानकारी मिलती है कि किसी सामाजिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न तत्व किस प्रकार जुड़े हुए हैं तथा वे संरचना को बनाए रखने में किस प्रकार का योगदान देते हैं। चूंकि प्रकार्यवादी यानी फंक्शनलिज्म सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण का कोई ठोस सिद्धांत नहीं है, इसलिए यहाँ इस पर अलग से चर्चा नहीं की जा रही है। जो कुछ भी सामाजिक परिवर्तन पर थोड़ा बहुत रोशनी पड़ती है वह सिर्फ आर के मर्टन के दुष्प्रकार्य यानी डायस फंक्शन की अवधारणा से ही संभव होता है, पर इसकी गणना सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के रूप में नहीं की जा सकती है। टैलकॉट पार्सन्स जैसे स्थापित प्रकार्यवादी चिंतक ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए ऐतिहासिक या उद्विकासीय प्रारूप का ही सहारा लिया है। उनका यह विचार उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा उद्विकासीय सिद्धांत के अंतर्गत भी की जा रही है। इसे उद्विकास का प्रकार्यवादी सिद्धांत इवोल्यूशनरी फंक्शनलिज्म भी कहा जा सकता है। उद्विकासीय सिद्धांत इवोल्यूशनरी थ्योरी। जब विभिन्न समाजों की ओर गौर किया जाता है तो पता चलता है कि विश्व के विभिन्न समाज विकास के अलग अलग स्तरों पर हैं। आज यदि विश्व के कुछ समाज शिकार एवं भोजन संचय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग की स्थिति में हैं, तो दूसरी तरफ पाश्चात्य देश विकास की चरम सीमा पर हैं। इन दो सीमाओं के बीच कुछ समाज पशुपालन स्तर यानी पेस्ट्रल स्टेज में भी हैं, तो कुछ समाज उन्नत कृषि स्तर यानी एडवांस्ड एग्रीकल्चर स्टेज में हैं। इन्हीं तथ्यों से प्रभावित होकर 19वीं सदी के कुछ समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि समाज में परिवर्तन एक उद्विकासीय प्रणाली के तहत होता है। समाज के विकास के विभिन्न स्तर होते हैं, उसे एक दूसरे से अलग करने के लिए लोगों ने विभेदीकरण यानी डिफ्रेंशिएशन जैसी अवधारणा का प्रयोग किया। उन लोगों का मानना है कि प्रारंभिक स्तर में समाज काफी सरल यानी सिंपल था और उसमें कम से कम विभेदीकरण पाया जाता था, पर जैसे जैसे समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ा वैसे वैसे विभेदीकरण भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता गया। सामाजिक विचारकों का यह विचार संभवतः जीव वैज्ञानिकों के विचारों से प्रभावित था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि उद्विकासीय स्तर पर अमीबा एक सबसे सरल प्राणी है और एक विकसित जानवर संरचना की दृष्टि से सबसे अधिक जटिल प्राणी है। उद्विकास का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु या जीव का सरल से जटिल अवस्था को प्राप्त करना है। मकीवर एवं पेज के अनुसार उद्विकास परिवर्तन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें परिवर्तनशील वस्तु की अनेक अवस्थाएं परिलक्षित होती हैं, जिससे उस वस्तु की मौलिकता का पता चलता है। दूसरी ओर ऑगबर्न एवं निमकोफ का मानना है कि उद्विकास एक निश्चित दिशा की ओर परिवर्तन है। संक्षेप में, उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यह अनवरत रूप से विभिन्न चरणों में धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। जैविक उद्विकास के सिद्धांत ने कई मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों के चिंतन धाराओं को काफी प्रभावित किया। चार्ल्स डार्विन के प्रभाव में आकर कुछ तत्कालीन सामाजिक विचारकों ने जैविक उद्विकास के जगह सामाजिक उद्विकास यानी सोशल इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने उद्विकास के भिन्न भिन्न कारकों की चर्चा की है। अगस्त कॉम्ट ने विचारों में परिवर्तन को उद्विकास प्रक्रिया का मूल माना है, तो दूसरी ओर स्पेंसर ने समाज में निहित आंतरिक शक्तियों और जनसंख्यात्मक पहलुओं में परिवर्तन को उद्विकास का मूल माना है। उधर एल एच मॉर्गन ने प्रौद्योगिकी परिवर्तन यानी टेक्नोलॉजिकल चेंज को ही उद्विकास का एक मौलिक कारक माना है। इस भिन्नता के बावजूद सामान्यतः 19वीं सदी के जितने भी उद्विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक और समर्थक थे, सभी ने रॉबर्ट ए निस्बेट के अनुसार एक ही किस्म के तथ्यों पर जोर दिया है। ये हैं, चेंज इज नेचुरल, डायरेक्शनल, इमेनेंट, कंटिन्यूअस एंड डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन कॉजेस। जेटलिन 1981। उस जमाने के जितने भी सामाजिक चिंतक थे, जैसे हेगल, सैंसीमा, टॉकविल, स्पेंसर, मॉर्गन एवं डॉर्कहाइम, सभी ने इस ढंग का विचार व्यक्त किया है। अब हम यहां बारी बारी से कुछ बड़े सामाजिक चिंतकों के विचारों का अध्ययन करेंगे।